सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हमने आपको याद है कि हमने पिछले इतवार को सर्वोपदेश की पुस्तक को शुरू करा और हमने परिचय के रूप में कुछ देखा था कुछ बातों को। सुलेमान के जीवन से हम सब बहुत ही अच्छी रीति से परिचित है। सुलेमान के जीवन के बारे में पहला राजा उसके आरंभिक 10-11 अध्याय तक हम उसके जीवन के बारे में पूरा देखते हैं, उसके उत्थान के बारे में देखते हैं तो उसके गिरने के बारे में देखते हैं। और पिछली बार जब हम सुलेमान के बारे में देख रहे थे तो कुछ बातों को मैंने आपके साथ बांटा था कि किस परिस्थिति में समय सुलेमान ये सब उपदेशक को लिख रहा है, क्या पृष्ठभूमि है, क्या उसके विचार हैं, किस रीति से वो एक संघर्ष में है। सुलेमान के पास किसी प्रकार से ज्ञान की कमी नहीं थी, बुद्धि की कमी नहीं थी, समझ की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, सेना की कमी नहीं थी, किसी चीज़ का उसके पास अभाव नहीं था, सब कुछ उसके पास बहुत आय से था। और सचमुच में बाइबल इस बात को बताती है कि इस पृथ्वी के ऊपर सुलेमान के अलावा और कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसके पास इतनी अधिक बुद्धि हो और जितना अधिक वैभव हो, जितना अधिक धन और सारा नाम हो। परंतु फिर भी एक संघर्ष के समय में आ जाता है और उसका कारण हमने देखा था क्या कारण थे। हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी तो व्यवस्था के समय में परमेश्वर ने राजाओं के लिए यह व्यवस्था दी थी कि जब राजा कोई बनता है और उसको राज शासन पर राज करने का अवसर मिलता है तो 4 मुख्य आज्ञाएं थीं जिनको उनको ध्यान में रखना तोड़ना नहीं है। और उसको उन 4 आज्ञाओं को हमने देखा जो व्यवस्था विवरण उसके 16:17-18 पद में हमने पिछली बार देखा था कि पहली आज्ञा थी कि वो राजा किसी प्रकार से अपने बहुत सारे घोड़े न बढ़ाए। घोड़े शारीरिक शक्ति का एक प्रकार से प्रकटीकरण है, प्रदर्शन है। और इसीलिए भजनकार दाऊद भजन संहिता 32 में लिखता है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें सम्मति दूंगा, तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा, जिस मार्ग में चलना है तुम्हारी अगुवाई करूंगा, भजन संहिता 32:8। लेकिन जैसे ही 9वें पद में दाऊद पहुँचता है, दाऊद 9वें पद में कहता है, और तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बनो जिनकी समझ को लगाम के द्वारा वश में रखना पड़ता है। घोड़ा का चित्रण जो बाइबल में दिया जाता है, तो किसी रीति से घोड़े लेने के लिए मिस्र में ना जाए। और ये भी दूसरी आज्ञा थी कि उसको मिस्र में भी नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र में से निकाल लिया तो मिस्र संसार को, संसार की बंधुआई को, गुलामी को या पाप को दर्शाता है। तो जब परमेश्वर ने उस मिस्र से निकाल लिया है तो उस समय राजाओं के लिए था कि वो मिस्र को ना जाए। आज मेरे और आपके लिए भी वही आज्ञा है, हम पुनः लौट कर मिस्र को ना जाएं। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार से निकाल लिया है, हमने साक्षी दी, हमने गवाही दी, हमने सामने वर्णन किया, आप किसी प्रकार से हम शत्रु शैतान के प्रलोभन में आकर, लुभाए जाने में आकर या किसी और चीज़ से, किसी ऐसी चीज़ में आकर के हम पुनः मिस्र में ना जाएं, नहीं तो जीवन और बर्बाद होगा। तीसरी आज्ञा थी तू बहुत सारा सोना इकट्ठा ना करना। और चौथी आज्ञा थी कि तू बहुत सारी स्त्रियाँ मत करना, क्योंकि तो अगर बहुत सारी स्त्री करेगा, अन्य जाति स्त्री होंगी, वो तेरे मन को परमेश्वर से हटा करके अपने देवी देवताओं की ओर लगा देंगी और तू उनकी उपासना करने लगेगा। और इन 4 आज्ञाओं को सुलेमान ने तोड़ा था, हमने पिछली बार उन रेफरेंस के साथ देखा था। और इसी कारण अब एक ऐसी स्थिति में वो आ गया है जो कहना चाहिए कि वो एक असफलता के दौर से गुजर रहा है, उसको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको संसार बिल्कुल अलग सा दिखाई दे रहा है। और तब उसी दौर में होते होते वो इस सर्वोपदेश की पुस्तक को लिखता है। अब उसके ध्यान में वो परमेश्वर से थोड़ा सा अलग है, अब अपने प्रयास से होकर के वो ज्ञान से, अपने ज्ञान में होकर, अपनी बुद्धि में होकर के बहुत बड़ी शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। उसने बहुत बड़ी शोध करी, रिसर्च करी, जिसका कुछ वर्णन हम नीति वचन में पाते हैं। और उसको वर्णन करते हुए कहता है कि मनुष्य का जीवन क्या है, अतः वो कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुलेमान कह रहा है कि जीवन मनुष्य का व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन उसका कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर से हटकर, परमेश्वर से अलग होकर जो कुछ भी मनुष्य करता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, 15 अध्याय में इसी बात को कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कई बार सोचते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा करा, बहुत बड़ी बड़ी अपने गोदाम बनाए, बहुत कुछ करा। होस्ते होस्ते सुबह अच्छे अच्छे डॉक्टर को बुलाया होगा, अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराया होगा, होस्ते होस्ते बहुत बड़े बड़े लायर्स को बुलाया होगा, वकीलों को बुलाया होगा, उन सारे लेखा जोखा कंप्लीट करा होगा और सब कुछ देख दा के, और उसने कहा होगा अब तो मैं बिल्कुल ठीक रीति से, मेरे पास धन भी बहुत है, मेरे पास स्वास्थ्य भी है, मेरे पास जीवन भी है, मेरे जीवन को क्या होता है, मैं आराम से बड़े चैन से खाऊंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा हे प्राण अब चैन से खा और पी और मौज कर। और कितने लोग इसी तरह का जीवन सोचते हैं कि संसार में रहकर केवल कहा जाता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्ती मनाओ। लेकिन वो इससे नहीं, और शायद ये भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू जाने कि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और परमेश्वर ये बार बार चिताता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से अलग होकर उड़ाव पुत्र ने भी बहुत सोचा था और उसने अपना सारा धन लेके चला गया था, लेकिन जब पश्चाताप करा, उसने आपे में आया, पश्चाताप करा, लौट आया, तब उसने एक संबंध अपने पिता के साथ स्थापित किया और तब उसने एक नई चीज़ को प्राप्त किया। सो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर भी, और पिछली बार हमने इस बात को, कुछ बातों को देखा था जो पहले 15 पद में हमने अध्ययन किया था। आज हम दूसरे अध्याय में आगे बढ़ना चाहेंगे। जब दूसरे अध्याय में हम देखते हैं तो एक संत अगस्तिन का आपने नाम सुना है, अलेक्जेंडर, उन्होंने इस प्रकार से कहा, ओ प्रभु आपने मुझे अपने लिए बनाया और हमारा हृदय जब तक आप में विश्राम ना पाले सदैव बेचैन रहेगा। मेरा जीवन, वो कहना चाहता है, प्रभु आपने हमें अपने लिए बनाया है और आपसे अलग होकर मेरा जीवन हमेशा बेचैन रहेगा। ये वही संत अगस्तिन थे जिन्होंने कहा था कि लोग जान लें कि खाली हाथ आया, खाली हाथ लौट जाएगा। हम अय्यूब को भी पाते हैं, अय्यूब ने भी कहा मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था और मैं नंगा लौट जाऊँगा। एक और प्रभु के सेवक हैं, डॉक्टर जैन गेट्स, अभी भी वो इस समय US में हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, अच्छे प्रचारक हैं। वो ये कहते हैं परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हम उसका आनंद उठा सकें, परंतु हमारी प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छा में रहना चाहिए, परंतु हमारी प्राथमिकता, साथ ही हमारा ध्यान उन अविनाशी एवं अनंतकाल की बहुमूल्य वस्तुओं पर होना चाहिए जिनका स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ आनंद मनाने के लिए दिया है, ये तो सही है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। वो कहते हैं हमारी प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छा में रहने की होनी चाहिए कि हम सदैव परमेश्वर की इच्छा में पाए जा सकें, और हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि हम अविनाशी और अनंतकाल की बहुमूल्य वस्तुओं पर ध्यान दें जिसका स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे और भी सेवक हैं जिन्होंने अलग अलग अपने विचारों को व्यक्त किया है इन बातों को ध्यान में रखते हुए। जब इन सारी बातों को देखते हैं तो हमने पिछली बार विचार करते हुए कुछ बातों को देखा था। हमने देखा था कि जो व्यर्थ शब्द है करीब 38 बार सर्वोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान लिखता है, और इस तरह से 30 बार सूर्य के नीचे वो शब्द का उपयोग करता है। जब दूसरे अध्याय में हैं तो हम इस पुस्तक के कुछ विभाजन को देखेंगे, कई तरह से पूरी पुस्तक के विभाजन को, जो सर्वोपदेशक की है, हम पूरी पुस्तक को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है विभाजन है इंट्रोडक्शन या परिचय, जो पहले अध्याय के पहले पद से लेकर 15 पद तक है, पिछली बार हमने उस पर ध्यान दिया था। दूसरा विभाजन जो है, दूसरा पोर्शन या दूसरा भाग जो है, 2 अध्याय के 1 पद से लेकर के 6 अध्याय के 9 पद तक है, जिसका शीर्षक हो सकता है 6 अध्याय के 10 पद से लेकर 12 अध्याय के 14 पद तक वो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उन सारी बातों को फिर से वो निचोड़ के रूप में लाता है। जब हम इन बातों को देखते हैं तो प्रश्न उठता है क्या इस जीवन में इस पृथ्वी की वस्तुओं द्वारा संतुष्टि प्राप्त होती है, क्या संभव है, क्या इस जीवन में इन पृथ्वी की वस्तुओं के द्वारा हमें सच्ची संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, क्या संभव है। जब हम 2 अध्याय में आते हैं तो 2 अध्याय में हम उन बातों को देखते हैं कि जिनको सुलेमान खोज के रूप में रखता है और कहना चाहता है कि मैंने प्रयास किया इन बातों को खोजने के द्वारा कि मैं संतुष्टि को प्राप्त कर सकूं, उसका उत्तर क्या है, नहीं। इस पृथ्वी की वस्तुएं हमें कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती, थोड़ी देर के लिए होता है फिर उसकी और ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हाँ हमें तृप्ति मिल रही है, हमें संतुष्टि मिल रही है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसकी प्यास लगती है, फिर उसकी भूख लगती है, फिर उसकी इच्छा लगती है, फिर उस पर चाह लगती है और होता चला जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो चार मुख्य बातें हैं। पहली चीज सुख विलास, संतुष्टि सुख विलास या आमोद प्रमोद के द्वारा। दूसरी बात संतुष्टि बुद्धि की खोज के द्वारा। बुद्धि पाना व्यर्थ नहीं है, बुद्धि चाहिए लेकिन कैसी बुद्धि। तीसरी बात संतुष्टि अर्थपूर्ण कार्य के द्वारा, वो कार्य जिसमें हमें लगता है कुछ अर्थ दिखाई दे रहा है और हम सोचते हैं इन कार्यों करने के द्वारा हमें कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलेगी, कुछ ऐसे कार्य जो अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है। चौथी बात जो है प्रतिभा एवं धन संपत्ति, जो धन संपत्ति के और प्रतिभा की खोज के द्वारा, इनसे भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। जब इन सारी भली बातों को देखते हैं तो जैसे हम कहना कहा है कि राजा सुलेमान एक बहुत धनी व्यक्ति था और उसने अपना पूरा मन खोज में लगाया था। जब इन बात को देखते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न, इस पृथ्वी पर संसार में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों संसार में हूँ, मुझे क्यों परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाऊं पीऊं और मौज मस्ती कराऊं और मर जाऊं, क्या मेरा जीवन का ये उद्देश्य है। क्या मैं दिन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर हमें विचार करना है, जिस पर मुझे और आपको सोचना है। मुझे स्वयं अपने आप से पूछना है, आपको स्वयं अपने आप से पूछना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पृथ्वी पर क्यों हूँ, और बार बार पूछना है और तब उसका अवलोकन करना है कि क्या सच में वो चीज़ जो मैं खोज रहा हूँ या उद्देश्य को जान रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। सुलेमान दूसरे अध्याय में के लगभग 10 बातों का वर्णन करता है जिसकी वो खोज कर रहा है। दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर दूसरे पद तक वो भोग विलास की बात करता है। दूसरे अध्याय के दूसरे पद में वो हंसी की बात करता है, लाफ्टर। दूसरे अध्याय के तीसरे पद में मदिरा की बात करता है। भोग विलास पहली चीज, हंसी दूसरी चीज, मदिरा तीसरी चीज, निर्माण कार्य, बिल्डिंग वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क। फिर उसके बाद आगे चल करके 7 पद से लेकर 9 पद तक वो बहुतायत की धन संपत्ति के बारे में बात करता है। उसके बीच में वो फिर 7वें पद में सब प्रकार के पशु जानवरों इनके बारे में बात करता है। 8वें पद में वो संगीत के बारे में बात करता है। सो इन सारी चीज़ों में वो क्या कर रहा है, ना केवल संगीत के बारे में बात करता है, फिर वो यौन के बारे में बात करता है, सेक्स के बारे में बात करता है, जिसमें उसके पास बहुत सारी रखेलियाँ हैं उनके बारे में बात करता है। इन सारी चीज़ों के द्वारा वो अपने सुख को प्राप्त करना चाह रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो छूट रहा हो। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस रीति से 9 पद से लेकर 11 पद तक कुछ बात करता है। और एक खास बात कहता है, वैध रीति से या उचित कुछ चीज़ें जो वैध रीति से हम सुख विलास को पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो दोष या लज्जा उत्पन्न करने के द्वारा, उसको आगे आगे फिर जाएंगे। लेकिन आइए हम दूसरे अध्याय के पहले पद से बढ़ेंगे। कहता है मैंने स्वयं का, अब क्या कह रहा है, मैंने स्वयं का, वो अपने आप को संबोधित कर रहा है, वो किसी और को संबोधित नहीं कर रहा, वो इन सारी चीज़ में खोज में अपने आप को ला रहा है। यद्यपि सब कुछ उसके पास था लेकिन इस समय उसका जो समय है कि परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूटी हुई थी, परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूटी थी और इसलिए वो कह रहा है मैंने स्वयं कहा अब आ मैं तुझे सुख विलास से जांचूंगा, अतः भोग विलास कर और देख ये भी व्यर्थ है। वो अपने स्वयं से कह रहा ठीक है, मैं इस चीज़ से भोग विलास के द्वारा अपने आप को जांचूंगा और देखूंगा मुझे कितनी अधिक इससे संतुष्टि मिलती है, कितना अधिक इससे आनंद मिलता है, कितना अधिक उससे मुझे लाभ मिलता है, मैं स्वयं इसको देखूंगा। और उसको देखने के कारण वो स्वयं प्रयास कर रहा है इन सारी चीज़ों को पाने के द्वारा। तब उसके बाद दूसरे पद में कहता है मैंने हंसी के विषय कहा, अर्थात आपको मालूम होगा आजकल एक ट्रेंड शुरू हुआ कुछ सालों से, बूढ़ों को हंसना चाहिए और जगह 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 वो ऐसे समूह बन रहे हैं कि सुबह सुबह लोग इकट्ठा होते हैं, बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं पार्क में और खूब ठहाका मारते हैं, हंसी लगाते हैं और वो हंसी से कहते हैं अपने दुख को बुला रहे हैं, अपने दुख को जो बुढ़ापे के उनका दुख है, दर्द है, पीड़ा किस तरह से शायद परिवार में ऐसे रह रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति है या बीमारी या कुछ है उसको बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत चल रहा है, कई नई बात नहीं, सुलेमान उसको खोज चुका है पहले। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और आज वर्तमान में चीज़ों को हम तुलना रीति से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ हमें नई नहीं लगती हैं कि बाइबल उन सारी चीज़ों का वर्णन पहले ही कर चुकी है, ये सारी चीज़ सच्चाई है। सो कह रहे हैं मैंने बहुत सोचा कि मैं ठीक है हंसी के द्वारा मैं कुछ प्राप्त कर सकूँ, कुछ संतुष्टि प्राप्त कर सकूँ, ये पागलपन है। वो कहता है ये पागलपन है, सुख विलास के विषय में इससे क्या लाभ होता है। तब तीसरे पद में मैंने हृदय में छानबीन की कि अपनी देह को मदिरा से किस प्रकार उत्तेजित करूं। अब ध्यान दीजिएगा, आप मत कहिएगा कि सुलेमान ने भी तो मदिरा पी थी, मैं भी मदिरा पीऊंगा। मदिरा पीना से बाइबल मदिरा के लिए मना करती है। दाखरस और मदिरा फ़र्क है। बाइबल में तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं जो इस वाइन है, स्ट्रॉन्ग वाइन है, इस तरीके से अलग अलग करके हैं। अल्कोहल भी शब्द आया है, सो ये अलग अलग है। सुलेमान क्या कह रहा है, मैंने सोचा ये मुझे थोड़ी देर के लिए आनंद प्रदान कर देगी, ये मुझे थोड़ी देर के लिए संतुष्टि प्रदान कर देगी, लेकिन क्या हुआ? अभी पिछले हफ्ते से आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, कितने लोग इसी नशे के चक्कर में अलीगढ़ में मर गए, परिवार बर्बाद हो गए, कितने परिवार और बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जीवन देने वाली चीज़ नहीं है। धीरे 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 कई लोग नशे में आते हैं, जवान लोग छोटी छोटी चीज़ों को नशे में ले लेते हैं, और कई बार नशा करके क्या होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, धन बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है, संबंध बर्बाद हो रहे हैं। सुलेमान कहता है ये इससे कोई पर्याप्त संतुष्टि नहीं देता, ये आनंद नहीं देता। कहता है और किस प्रकार मूर्ता में लगा रहूं, उत्तेजित करूं और किस प्रकार मूर्ता में लगा रहूं, जबकि मेरा हृदय बुद्धिमानी से मेरी अगुवाई करता रहा, जब तक मालूम ना कर लूं कि मनुष्य के लिए कौन सा अच्छा काम है जिससे वे आकाश के नीचे अपने जीवन के थोड़े दिनों में करे। वो जानता है कि मनुष्य का जीवन थोड़े दिनों का है, इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं मनुष्य का जीवन बाप के समान है, 42 वर्ष के समान है, थोड़े दिन का है, आयु के दिन बताता हूँ, सुलेमान, दाऊद, ये सब बार बार हम पढ़ते हैं। लेकिन वो कहता है ये भी सब बेकार है। तो कह रहा फिर मैंने अपने कार्य पर विस्तार किया। अब अपने कार्य को देखता है, बैठ के उसने सोचा होगा मैंने क्या क्या कार्य किया, और उन कार्य पर विचार करते करते तब वो कहता है कि मैंने क्या काम नहीं किया। अब यहाँ बिल्डिंग प्रोजेक्ट को देख रहा है वो, क्या क्या उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में उसने बनाया, इस बहुत बड़ा निर्माण का कार्य उसने करा। मैंने अपने घर बनवाया, अपना घर बनाया, अपने लिए दाग की बारियां बनवाई, बहुत बड़ी बड़ी दाग की बारियां बनाई, अपने लिए बाग बगीचे लगाए तथा उनमें सब प्रकार के फलों के वृक्ष लगवाए। मैंने अपने लिए जल के तालाब खुदवाए और उनसे बढ़ते हुए वृक्षों के जंगल की सिंचाई की जाए। क्या नहीं करा, यह उसका बिल्डिंग वर्क था। कंस्ट्रक्शन वर्क में उसका ना केवल भवन बनाना था, लेकिन भवन के साथ साथ उसने खेत बनवाए, बगीचे बनवाए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, फल लगवाए, सिंचाई करवाई, सब कुछ कराए, सिंचाई का साधन किया, सब कुछ किया, कोई चीज़ नहीं बची थी, लेकिन ये भी उसके लिए व्यर्थ था, ये काम भी उसके लिए व्यर्थ था। तो क्या कहता है आगे चल के सातवें पद में, मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में उत्पन्न हुए गुलाम भी थे। उन दास दासियों से मैंने उन लोगों को उत्पन्न किया जो बाद में चल के गुलाम बन गए। मेरे पास भेड़ बकरियां और समूह तथा गाय बैल और झुंड भी उन सबसे अधिक थे जो यरूशलेम में मुझसे पहले हुए। इससे मेरे से पहले जितने भी राजा थे उन सबसे पहले जो मेरे पास पशु थे उन पशुओं की संख्या उन सबसे अधिक थी। क्या चीज़ नहीं उसने करी, थोड़े से सालों में उसने क्या कुछ नहीं करा। तथा गाय बैलों के झुंड भी उन सबसे अधिक। आठे पद में, मैंने अपने लिए सोना चांदी और राजाओं के प्रांतों के खजाने संचय किए। मैंने बताया था कि उसने सोना और चांदी की उसके पास कमी नहीं थी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा भी था इसके कारण, ना के लिए। अब क्या उसने किया, मैंने अपने लिए गायक गायिकाएं पुरुषों को सुख देने वाली अर्थात बहुत सी रखेलियाँ भेंट ली, संगीतकार जो उसको संगीत सुना करके उसको आनंद दे सके, उसको संतुष्टि प्रदान कर सके, उनकी भी कमी नहीं थी। मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ाऊँ ताकि आप विचार करें कि हर क्षेत्र में उसने चीज़ को कोशिश करिए पाने के लिए। रखेलियाँ, जिन रखेलियों ने क्या करा, बाद में चल के उसके मस्तिष्क को फेर दिया, उसके दिमाग को फेर दिया, उसकी बुद्धि को फेर दिया, और तब वही रखेलियाँ होती उन्हीं की देवी देवताओं की उपासना करने लगा, ऐसा उसका नुकसान हुआ। नवा पद, इस प्रकार मैं बड़ा महान और उन सबसे अधिक संपन्न हो गया जो मुझसे पहले यरूशलेम में हुए थे। मेरी बुद्धि भी मुझ में बनी रही। कह रहा मैं सबसे अधिक संपन्न हो गया, किसी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं थी। बार बार विस्तार से आप देखते रहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ इसको जीवन प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, इसको संतुष्टि प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, इसको आनंद प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह से वर्णन करते हुए 11 पद तक वो आता है और तब कहता है मेरी आंखें जो कुछ देखने की इच्छा करती थी उनका मैंने इनकार नहीं किया। मैंने अपने हृदय को किसी सुख विलास से वंचित नहीं रखा। क्या मेरा हृदय मेरे सब परिश्रमों के कारण प्रसन्न था? और यही मेरे सारे परिश्रम का पुरस्कार था, क्योंकि मेरा हृदय मेरे सब परिश्रमों के कारण प्रसन्न था, खुश था। मैं देख देख कर बहुत अधिक आनंदित होता था। मेरे पास घर है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास धन है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, दुनिया भर की जो चीज़ है जिसको मैंने समेट कर रख रखा था। और आज कितने लोग इसी चीज़ से संतुष्ट रहते हैं और वही इसी तरह से देख देख करके अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर, अपने वैभव पर, अपनी मित्रता पर, अपनी खोज पर, अपने शोध पर, इन सब कुछ पर वो प्रसन्न रहता था। कह रहा है क्योंकि मेरा हृदय मेरे सब परिश्रम के कारण प्रसन्न था और यही मेरे सारे परिश्रम का पुरस्कार था। 11 पद, इस प्रकार मैंने अपने उन सब कार्यकलापों पर विचार किया जो मेरे हाथों ने किए थे तथा उस परिश्रम पर जो मैंने किया था, और देखो सब व्यर्थ तथा वायु को पकड़ने के का प्रयास है और सूर्य के नीचे कोई लाभ नहीं। कह रहा सब कुछ करने के बाद निचोड़ कहाँ पर पहुँचा है, निष्कर्ष कहाँ पर पहुँचा है, सब कुछ व्यर्थ है। अब ऐसा ना हो कि सुनने के बाद कोई कहे कि मुझे नौकरी पे नहीं जाना चाहिए, मुझे घर में बैठा रहना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे घर पे बैठा रहना चाहिए। ये तो बाइबल तो कहती है सब कुछ व्यर्थ है, तो क्या है घर में बैठे ना। कई बार लोग अपने स्वार्थ के कारण वचन को तोड़ते मरोड़ते बहुत हैं, लेकिन इसके अर्थ को समझना है। बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है, हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा बनाना है। तो वो कहता है 12 पद से लेकर के 17 पद तक में संसार की बुद्धि के बारे में बात करता है। अभी तक सारी जिस बुद्धि में होकर सब कुछ खोजबीन करा, देखा, ये बनाया, सब कुछ बनाया, उससे कितना परिश्रम किया, नौकर की उसके पास कमी नहीं थी, कारीगरों की उसके पास कमी नहीं थी, धन की पास उसके पास कमी नहीं थी, किसी चीज़ की पास कमी नहीं, जो वो चाहता था कर सकता था, आदेश देता, ऑर्डर देता, सब कुछ हो जाता था। प्रजा उसकी बहुत बड़ी थी। मैंने पिछली बार बताया था सुलेमान के राज में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि सुलेमान युद्ध से बचा रहा, उसके राज में सबसे ज़्यादा उस समय शांति रही। दाऊद युद्ध में गिरा रहा लेकिन सुलेमान युद्ध से नहीं गिरा रहा। फिर उसके बाद जब सुलेमान से राज विभाजित होता है, यरोबाम में चला जाता है और अहोबियाम में, तब उसके बाद फिर युद्ध शुरू होते हैं। लेकिन सुलेमान के समय में युद्ध से भी शांति पाई गई और इसीलिए उस समय में ये सारी चीज़ों को खोजबीन में वो दे सका। कहता है 12 पद से लेकर, अतः मैं बुद्धि, पागलपन और मूर्ता पर विचार करने को मुड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति राजा के पीछे आएगा वो उन सब कामों के अतिरिक्त और क्या करेगा जो अब तक किए जा चुके हैं। तब मैंने देखा कि किस प्रकार अंधकार से बढ़कर प्रकाश, उसी प्रकार बुद्धि मूर्ता से बढ़कर है। यहाँ पर समझ में आया, तुलना कर रहा है, लेकिन अभी भी वो बुद्धि की उस प्रकार की बुद्धि की बात नहीं कर रहा जो परमेश्वर की बुद्धि है। अभी परमेश्वर की कोई भी बात वो नहीं कर रहा, वो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी चीज़ों को ला रहा, अपने प्रयास को ला रहा है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से बातचीत कर रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से बात करते हुए वो कह रहा है कि देखो किस प्रकार से अंधकार से बढ़कर प्रकाश है, उसी प्रकार बुद्धि मूर्ता से बढ़कर है। और मेरे प्रियो, आप वैसे भी साधारण रीति से बातचीत करें, ये सच है, हम अंधकार में टटोलते हैं, अंधकार में धक्के खाते हैं, अंधकार में हम ठोकर खाते हैं, अंधकार में हम लोगों को नहीं पहचानते, अंधकार हमें विनाश क्यों ले आता है, और शैतान और संसार हमें अंधकार की ओर धकेलता है, लेकिन प्रकाश की ज़रूरत है और प्रकाश प्रभु यीशु मसीह में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची ज्योति मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। सच्चा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह में है, ये सुलेमान उस समय बात कर रहा है, लेकिन मैं आज वर्तमान की स्थिति की बात कर रहा हूँ। यदि आप अंधकार में चल रहे हैं और अंधकार में टटोल रहे हैं तो आप आगे चल करके कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, कोई ना कोई गड्ढे में गिर जाएंगे, कोई ना कोई हानि हो जाएगी, और इसलिए अवश्य उस यीशु के पीछे आइए जो यीशु प्रकाश है, जो आपको प्रकाश में ले चल सकता है। सुलेमान के जीवन का अंत वही हुआ है, वो समझ गया अंत में चल करके, अभी तो बीच के उस समय जा रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरे और आपके हाथ में सुसमाचार रखा है, अपने वचन को रखा है, अपने पवित्र आत्मा को रखा है, अपने शिक्षकों को दिया है, अपने अगुओं को दिया, अपने लोगों को दिया है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और हमें उस रास्ते पर ले चलते हैं जो अंधकार से हट करके प्रकाश में है। लेकिन हम किस प्रकार से उनको स्वीकारते हैं, किस प्रकार से तिरस्कारते हैं, हमें देखना है। कहता है बुद्धि मूर्खता से बढ़कर है। ज़रूर मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया, आप जानते हैं उसके बंधन को। तब आगे चलकर कह रहा है, परंतु फिर भी मैं जानता हूँ दोनों का अंत एक सा है। ठीक है, उनका अंत एक सा है, चाहे जैसे भी हो। तब मैंने अपने हृदय में कहा, मूर्ख का जो परिणाम होता है वही मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। क्यों? उसका वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने एश्योरेंस को, एक निश्चयता को खो चुका है। हम उद्धार को नहीं खोते हैं, लेकिन उद्धार की निश्चयता को कई बार खो देते हैं। हम सेल्वेशन को लूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एश्योरेंस ऑफ सेल्वेशन को हम कई बार लूज़ कर देते हैं। और इस समय वो इतना अधिक ऐसे निराशे की स्थिति में है कि वो यही समझ रहा है। अतः वो कह रहा है, तब मैं अत्यधिक बुद्धिमान क्यों हुआ? अतः मैंने हृदय से कहा, ये भी व्यर्थ है, क्योंकि मूर्ख की भांति बुद्धिमान का स्मरण भी स्थायी बना ना रहेगा। सच है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक पीढ़ी उसको याद रखेगी, दो पीढ़ी याद रखेगी, तीन पीढ़ी याद रखेगी। हम कितने अधिक हैं जो अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को जानते हैं या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? नाम तक नहीं जानते हम। ज़्यादा ज़्यादा हम दादा को जानते हैं। कितने जो परदादा को जानते हैं या उससे पहले के दादा को जानते हैं? नहीं जानते। वो ये कहना चाह रहा है, और इसलिए हमें इसके कारण ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो कह रहा है ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तब 17 पद में, अतः मैंने जीवन से घृणा की, क्योंकि स्वर्ग के नीचे जो काम किया गया था वो मुझे बुरा लगा, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समय प्रयास मात्र है। वो कह रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरे पास कोई आशा नहीं है, अगर सब कुछ करने बाद मेरे पास निराशा निराशा है, मुझे भविष्य की कोई मेरे सामने आशा नहीं है, तो मैं क्यों करूं? व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्हें प्रभु ने भविष्य की आशा दी है। ये फर्क है पुराने नियम और नए नियम में। प्रभु यीशु मसीह में होकर के ना केवल हमें उद्धार मिलता है, सेल्वेशन मिलती है, लेकिन हमें एक आशा मिलती है कि एक दिन आएगा वो, हमें अपने साथ ले जाएगा, जैसा हम उसको देखेंगे और उसके साथ राज करेंगे अनंत काल तक, उसके साथ उसके समान होंगे, उनके काल तक राज करेंगे। पहला योनास का 3 अध्याय में 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, कितना दिखा। अब 18 पद से लेकर के जब हम 24 पद तक आते हैं, तो यहाँ पर एक और बात वो कहता है जिसको देखना है, खास से 21 पद में, कोई ऐसा भी मनुष्य होता है जो बुद्धिमान, ज्ञान और निपुणता से परिश्रम करता है। इस प्रकार मैंने अपने परिश्रम के सब फलों का से घृणा की, जिनके लिए मैंने सूर्य के नीचे परिश्रम किया था। मेरे प्रियो, बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सुलेमान जो बातचीत कर रहा है, परमेश्वर से अलग हटकर बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रभु में किया हुआ परिश्रम किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं ठहरता। दूसरी ओर बिना प्रभु के जो भी हम करते हैं उसमें व्यर्थ ठहरता है। यह फर्क है। प्रभु हमारे परिश्रम पर आशीष देता है, प्रभु और अधिक हमें उत्साहित करता है कि हम और अधिक उसके कार्यों के लिए और अधिक परिश्रम करें, जो कुछ भी है। लेकिन प्रभु से हटकर, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को आज तक नहीं जाना है, अपने पापों की पश्चाताप नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी है, यदि आपको यह निश्चय नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है, आपने नया जन्म पाया है, आपने पापों से पश्चाताप करके उसको प्रभु और उद्धार करके सच्चाई के साथ स्वीकार किया, आप सच्चाई के साथ उसके पीछे चल रहे हैं, अगर आप यह निश्चय नहीं है, तो मेरे प्रिया आपके सारे कार्य व्यर्थ हैं। उनसे आपको जीवन नहीं मिलेगा, उनसे आपको शांति नहीं मिलेगी, उनसे आपको उद्धार नहीं मिलेगा, हमारे धर्म के कर्म भी हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, प्रभु को जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने बाद, उसके द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करने बाद, उसके राज में शामिल होने बाद, उसके संतान बनने बाद, उस आशा में होने के बाद, जो भी आप करेंगे परमेश्वर आपके कार्य पर आशीष देगा। लेकिन वो जब निस्वार्थ और परमेश्वर की महिमा की इच्छा में किए जाएँ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ किए जाएँ। कहता हूँ इस पद में, वो कौन जानता है कि बुद्धिमान हो गया मूर्ख, फिर भी वो मेरे परिश्रम के फल पर अधिकार रखेगा, क्योंकि जैसे मैंने सूर्य के नीचे बुद्धिमानी के साथ परिश्रम किया है, ये भी वर्थ है। वो कह रहा है कुछ भी हो, क्यों ना हो, इसलिए मैं आपके परिश्रम के उन सब फलों से अधिकतर हताश हो गया। ये उसकी स्थिति है। मैंने बहुत परिश्रम किया, रात दिन खोज की, रात दिन ज्ञान को ढूंढा, रात दिन रिसर्च किया, शोध किया, सब कुछ, हर चीज़ को, लेकिन मुझे उस पर कोई आशा नहीं मिली, कोई संतुष्टि नहीं मिली। मेरे प्रियो, पौलुस ने भी अपने जीवन में इस बात को सीख लिया था। पहले प्रभु में हट करके वो सब कुछ करना चाहता व्यर्थ था, लेकिन अब जब प्रभु में आ गया था तो अब वो कहता है मेरा जीना मसीह मरना लाभ है। अब उस कहता है कि परमेश्वर जो मुझे संतुष्टि प्रदान करता है, अब उसकी संतुष्टि प्रभु यीशु मसीह बन गया था। फिलिपी में इसीलिए 4 अध्याय में इस बात को कहता है वो, अब उसका संतुष्टि का स्रोत प्रभु यीशु मसीह बन गया था। मेरे प्रियो, हमारे संसार में संतुष्टि का स्रोत संसार की चीज़ें नहीं है, संसार की धन संपत्ति नहीं है, संसार का वैभव नहीं है। कितने लोग किसी उसी को जमा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ना वो खाते हैं ना किसी को खिलाते हैं, ना पहनते हैं ना किसी को पहनाते हैं, ना प्रभु को देना चाहते हैं ना किसी और के लिए अच्छे काम के लिए करना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, शायद कलीसियाओं में भी कितने ऐसे लोग हैं। और ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चुनौती देता है, प्रदान करता है, किस प्रकार के जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। क्या अभी भी हमारा जीवन सुलेमान के समान उसी प्रभु से अलग है? और अगर प्रभु से अलग होगे तब भी क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव बल्ला है, या अभी भी हम उस पुराने उसमें बंधे हुए हैं? ज्ञान प्राप्त करना बुरा नहीं है, ये सब कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सब कुछ क्यों? और यहाँ तो कहता है ऐसा कोई किस्मत में कोई भी मनुष्य हो बुद्धिमान ज्ञान निपुणता पर प्रशम करता है और अपनी पैतृक संपत्ति को ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। रात भर 24 घंटे मेहनत करी, कितने परिवारों कितने लोगों को हमने इस प्रकार से देखा है जिन्हें बहुत मेहनत करी, ना कायदे से खाया, ना कायदे से पहना, ना कायदे से कुछ करा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे चले गए संसार से, सारी संपत्ति छोड़ गया। आज कुछ कोई दूसरे लोग उसका लाभ उठा, ना प्रभु को देने के तैयार, ना किसी और को देने तैयार। तो सारी चीज़ें मुझे और आपको जांचने की चीज़ें हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार का है। हम ये कहना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभु से अलग हट करके जो मैं कर रहा हूँ व्यर्थ है और इसलिए मुझे प्रभु के साथ रह करके सब कुछ अच्छा करने के लिए तैयार होना है। मेरे विचार और विचार, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ वैध रीति से या उचित रीति से मनुष्य जो दो प्रकार से आनंद या सुख विलास प्राप्त करता है। पहला वैध रीति से, उचित रीति से, जो सही तरीके से, सही रीति से। लेकिन एक दूसरा है जो दोष या लज्जा उत्पन्न करता है, जो इस प्रकार से आनंद और वो प्राप्त करना चाहता है जिसमें दोष उत्पन्न होता है, लज्जा उत्पन्न होती है, बुराई उत्पन्न होती है, पाप उत्पन्न होता है। अगर एक विश्वासी जुआ खेलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? लज्जा उत्पन्न करेगा। नशा करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? लज्जा उत्पन्न करेगा। लड़ाई झगड़ा करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? लज्जा उत्पन्न करेगा। हम विश्वासी हैं, हमारे मुँह से अगर गाली निकलेगी, बात बात पर गाली निकलेगी, जहाँ कहीं भी हम, तो हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं? इसी मुँह से हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, लंबी लंबी एक एक घंटा दुआ कर रहे हैं, उसी मुँह से हम गाली दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लज्जा उत्पन्न हो रही है। अरे अपने आप को तो विश्वासी कहते हैं, बड़े धर्मी बनते हैं, लेकिन गाली देते हैं, ऐसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं, जो बात कही उसको पूरा नहीं करेंगे, धोखा देते हैं, विश्वासी हैं। तो हमारे काम होंगे क्या? लज्जा उत्पन्न हो रही है या वैध तरीके से सही रीति से हम काम कर रहे हैं जिससे लज्जा उत्पन्न नहीं होती? तो सुलेमान इन्हीं बातों को बहुत सुंदर है, वो कहता है कि जो संपत्ति छोड़ जाते हैं ये भी व्यर्थ और बड़ा बुरा है। क्यों बड़ा बुरा है? भैया तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए ना तो खुद खाया, ना दूसरों को खिलाया, जब बटा बटोरते रहे, जमा करते रहे और दूसरा उठा के लेके चलो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करो जो जिसे दीमक और खाया कीड़े खा जाते हैं। परमेश्वर वहाँ मैं मूर्ख नहीं बनाना चाहता। मैं कल परसों किसी से बातचीत कर रहा था और मैं कह रहा था कि आपको जो धन आपके पास आता है ईमानदारी से आपको क्या करना चाहिए? पहले आपके हृदय में धन्यवाद का आत्मा होना चाहिए, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और तब उसके बाद धन्यवाद देने के बाद आप परमेश्वर का हिस्सा निकालें। हो सकता आप प्रतिदिन में आपको पैसा मिलता, अच्छा तरीका है, घर में एक बॉक्स रख लें जो प्रतिदिन की आय होती है उसमें से दशमांश निकाल के उसमें डाल दें और बाद में प्रभु के भवन में दे दें। और तीसरी बात, चाहे 5 रुपये हो आप सेव करें और तब उसके बाद बजट बनाकर खर्चा करें। बचत करना पाप नहीं, सेविंग इज नॉट सिन, लेकिन कैसे करें इसको समझना है। अगर बुद्धिमानता से आप पैसा इकट्ठा करके संभाल के चलते हैं तो कल आपको हाथ फैलाने से आपके रुक जाते हैं। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास योजना नहीं है, आपके पास ये नहीं है, ये कौन देगा? परमेश्वर बुद्धि देगा, परमेश्वर समझ देगा। आज जितना मिला उड़ा दिया, उसके बाद 3 दिन 4 बाद भैया 500 रुपये दे देना, पैसा खत्म हो गया, भैया इतना दे देना, ये हो गया, भैया इतना दे दिया। और जब तनख्वाह मिली तो सर पहले तो जो लिया था सब बांटने लगे, तो बचेगा क्या? क्यों? जब था तो उस समय ऐसे उड़ाया, किसी सलाह नहीं मानी, किसी समझ नहीं माने, उड़ाते गए। बाद में कंगाल बन गए। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती मेरे प्रियो, बहुत समझदारी से। तो ऐसे भी लोग हैं जो बिना समझ के उड़ाते हैं, ऐसे लोग हैं जो कंजूसाई करते हैं, ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खिलाते हैं। परमेश्वर से समझ मांगनी, बुद्धि मांगनी, कैसे हमें धन का संचालन करना है, कह रहा है सब कुछ व्यर्थ है। तब 24 पद से लेकर के वो निचोड़ में आता है, 23 पद में कह रहा है वो, क्योंकि उसके सब दिन दुखदायी और कष्टदायक होते हैं, यहाँ तक कि रात में भी वे उसका मन विश्राम नहीं पाता। रात में भी उसका मन बेचैन रहता है, चिंता रहती, रात में सो रहा है, अरे कल उसका देना है, अरे उसका देना है, कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्यों करूँगा, बेचैन रहता है। कई बार इतना देखता हूँ, चोर ना चोरी कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, लेकिन परमेश्वर का वचन ये प्रैक्टिकल है। सब उपदेशक पुस्तक बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो हम देखते चले आएंगे। 24 पद से लेकर के 26 पद तक जो निचोड़ में वो कहता है और निष्कर्ष में वही है, परमेश्वर ही संतुष्टि का देने वाला है। सुलेमान के पास सब कुछ था, बुद्धि, धन, शौहरत, सब कुछ थी, सब कुछ, लेकिन क्या कह रहा वो, किसी मनुष्य के लिए इससे भली और कोई बात नहीं कि वो खाए पिए और अपने परिश्रम को देखकर संतुष्ट रहे। ये भी मैंने देखा है कि ये परमेश्वर की ओर से होता है, ये उसके स्वयं की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से होता है। तब क्या है, परमेश्वर उसको आज़ादी देता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। मैंने शायद पहले बताया था कि यहोवा शब्द इसमें नहीं आया, लेकिन जहाँ कहीं भी शब्द आया वो परमेश्वर शब्द आया। जो इंग्लिश में शब्द आया वो गॉड है, GOD, गॉड, कैपिटल जी, एलोही, उस शब्द का जो हिब्रू का जो अर्थ है वो वास्तविक रीति से एलोही में, परमेश्वर शक्तिमान। कहता है क्योंकि परमेश्वर के बिना कौन खा पी सकता है और आनंद ना सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसकी दृष्टि में भला है उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। अभी जो बुद्धि परमेश्वर देता है, वो परमेश्वर जो बुद्धि देता है वो बुद्धि नहीं संसार देता है। याकूब बहुत सुंदर रीति से इस बात को वर्णन करता है, याकूब की पत्री में अगर आप देखेंगे उसके 3 अध्याय में 13 पद से, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा है वो अपने कार्यों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, अगर आप अपने आप को ज्ञानवान और समझदार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, तो वो आपको अपने उन कार्य से और अच्छे चालन चलन से और नम्रता सहित, 3 चीज़ें, कार्य, चाल चलन और नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में कटु, ईर्ष्या, स्वार्थी आकांक्षा हो, केवल अपनी इच्छा पूरी, केवल अपना चाहना, केवल अपना स्वार्थ, आपका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, अगर नहीं पूरा होना चाहिए दुनिया जाए भाड़ में, या फिर स्वार्थ पूरा होने तो दुनिया के सारे लोग खराब हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये गलत है। कह रहा है कटु, ईर्ष्या, स्वार्थी आकांक्षा हो तो गर्व न करना और न सत्य के विरोध में झूठ बोलना, ये तो वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से आता है, उतरता है, वरन शारीरिक, स्वाभाविक और शैतानी है। ये ज्ञान कैसा ज्ञान है, जो संसारिक है, स्वाभाविक है और शैतानी है। स्वाभाविक मतलब जो हमारे स्वभाव के कारण, पाप के स्वभाव के कारण, जो हमारा नेचुरल वास्तविक सा हमारा नेचर है, बिना परमेश्वर के पास आए जो पहले पाप का स्वभाव है उसके कारण है। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में आता है परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदलता है। 16 पद, क्योंकि जहाँ डाह और स्वार्थी आकांक्षा है और बखेड़ा है वो हर प्रकार से की बुराई से ही होता है। 17 पद, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, स्थिर और कपट रही होता है, मेल मिलाप कराने वाले उस बीज को जिसका फल धार्मिकता है मेल के साथ बोते हैं। तो दोनों, एक स्वर्ग ज्ञान है, एक पृथ्वी का ज्ञान है। पृथ्वी का ज्ञान हमारे जीवन को नाश करता है, और सुलेमान जिन बातों की बात कर रहा है वो परमेश्वर से अलग उठ करके पृथ्वी के ज्ञान की बात कर रहा है, और उसको कह रहा है वो व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं, हानि हानि, यही चीज़ याकूब भी कह रहा है। लेकिन 26 पद में, जो व्यक्ति उस दृष्टि में भला है उसको वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान कर सकते। कैसे हम परमेश्वर की दृष्टि में भला बन सकते हैं, हम तो भले हैं ही नहीं, हमारे अंदर तो कोई ऐसी भलाई नहीं है, हम तो शुरू से पाप में थे, हमारे स्वभाव में पाप था, हमारे चाल चलन में पाप था, हमारे मन मस्तिष्क और भावनाओं में का पाप था, हमने पाप में तो जन्म लिया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम और दया के लिए और उस करुणा के लिए जो उसने पहले होकर हम पर दर्शाया, कि जिस समय हम पापी थे, हम नाश हो रहे थे, ठीक से मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन देने वाला, सदाकाल का जीवन, मरने के बाद भी जीवन, संतुष्टि का जीवन। और मेरे प्रियो, ये सचमुच में मैं इस बात को जानता हूँ, इस पृथ्वी पर संतुष्टि नहीं है। इवन हम प्रभु में आने के बाद भी, हम मसीह होने के बाद, विश्वासी होने के बाद भी, जरूर कुछ अंश हमारे अंदर संतुष्टि का होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर पुराना स्वभाव रहता है, पाप का स्वभाव रहता है, और पुराना स्वभाव नया स्वभाव संघर्ष करता है। परंतु एक बात जरूर है कि हमारे पास एक धन्य आशा है कि जब एक दिन हम प्रभु के पास जाएंगे, उस राज में रहेंगे, जहाँ उसकी उपस्थिति में होकर हम पूरी रीति से संतुष्टि का जीवन को प्राप्त करेंगे सब कुछ, तब इस पृथ्वी की संतुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी जो अल्पकालीन है, थोड़े समय की है, लेकिन वो अनंत की संतुष्टि होगी, अनंत का जीवन होगा, आनंद की भरपूरी होगी, आनंद की महिमा होगी जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में होगी। ये हमारे लिए धन्य आशा है, और इसलिए हम जो संसार में जी रहे हैं उसको देख के जी रहे हैं। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, और यीशु की ओर ताकते रहो, यीशु की ओर ताक, हम उस निशानी की ओर ताकते रहते हैं जो यीशु मसीह है, उसमें होकर हम आगे चलते रहते हैं, ये हमारी आशा है। और मेरे प्रियो, लेकिन पापी के लिए क्या लिखा है, वो कहता है, परंतु पापी को उसने एकत्र करने के तथा संग्रह करने का कार्य सौंपा है, क्या क्या कि परमेश्वर उसे उस मनुष्य को दे दे जो उसकी दृष्टि में भला है। जो चीज़ वो इकट्ठा कर हम दे चुके हैं, ये व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है। फिर से निचोड़ क्या है, बिना प्रभु यीशु मसीह के जीवन व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान नहीं है, या आप 30-40% या 70-30% लेके, या 50-50% ऐसे लेके चल रहे हैं, तभी बेकार है। 100% आपका जीवन, मेरा जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। इसीलिए पौलुस रोमियों के लिखता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावतव बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम इस संसार के सदृश न बनो, संसार के सदृश न बनाओ, क्योंकि संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धि, संसार का सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली और भांति इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। निर्णय आपके ऊपर है, आप किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, किस खोज में आप लगे हैं। पृथ्वी के द्वारा, आप पृथ्वी की वस्तु के द्वारा आप आनंद प्रमोद की खोज में लगे हैं, या सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चाई के साथ चलने के द्वारा। मेरे प्रिय, यदि ऐसा नहीं है तो आपको पश्चाताप करना चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। एक मसीह जीवन सच्चा पश्चाताप का जीवन है, क्योंकि हम वचन को सुनते हैं, वचन हमसे बातचीत करता है, और हम एकदम से वहीं उठ के छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप पश्चाताप करके अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, मेरे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, आप उठते हैं उड़ाव पुत्र के समान। लिखा है, जब वो आपे में आया तो उठा, उस स्थान से आप उठते हैं, कहता मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा मैंने तेरी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। आप उठकर परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं, आप क्षमा मांगते हैं, और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको नई बुद्धि प्रदान करेगा, जिस बुद्धि में होकर के आप सच में एक संतुष्टि को पहचाने पाएंगे, सच्चे आनंद को पहचाने पाएंगे, सच्चे जीवन को पहचाने पाएंगे। और प्रभु, अन्यथा सुलेमान की तरह जो इस समय निराश है, हताश है, परेशान है, आप भी निराश और हताश बने रहेंगे। जब हम इन बातों को देखते हैं तो दो लक्ष्य हैं जिनको मैं आपके सामने छोड़ना चाहूँगा, जिसको आप और मुझे लेना है। पहला, जितना अधिक और अच्छी रीति से हम यीशु को जान सकते हैं, जानने का प्रयास करें। हमने यीशु को जाना है, लेकिन और अधिक जानिए उसको, हमें और अधिक उसको जाना है, यीशु के स्वभाव को जाना है, यीशु के मन को जाना है, यीशु के चरित्र को जाना है, यीशु की मनसा को जाना है, यीशु की इच्छा को जाना है, और अधिक उसको जानिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम यीशु को और अधिक जानें, हम उसके समान बने, जैसा वो है उसके समान बने, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। संसार पीछे रहे, यीशु हमारे आगे रहे, उसके ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। अगर ये हमारे अंदर प्राथमिकता नहीं है, हम कभी प्रयत्नशील नहीं हो सकते। दूसरी बात, जहाँ तक हो सके यीशु को जाने के बाद, सुसमाचार को जाने के बाद, हम उन लोगों को जो अभी तक बचाए नहीं गए, जो अभी भी अंधकार में हैं, या उस संसार की चीज़ों में उस आनंद को, उस प्रमोद को, या सुख विलास को ढूंढ रहे हैं, या संतुष्टि को ढूंढ रहे हैं, उनको सच्चा सुसमाचार बता सकें, बांट सकें, ताकि वो यीशु के पास आकर के सच्ची संतुष्टि को प्राप्त कर सके। ये दो लक्ष्य, पहला लक्ष्य हम प्रत करें, दूसरा लक्ष्य सुसमाचार बांटें। और तब उसके बाद मेरे प्रियो कि किस रीति से हम सचमुच में उस सच्चाई को संतुष्टि को खोज कर सके। दाऊद एक वचन में लिखता है भजन संहिता 16 उसका 11 पद, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो बिना प्रभु की उपस्थिति के आपको आनंद नहीं मिल सकता। आप किसकी उपस्थिति में हैं? क्या प्रभु इसकी उपस्थिति से दूर तो नहीं है या दूर तो नहीं जा रहे हैं? शैतान धीरे 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 जाल में फंसाता चला जाता है। आपने शिकारी को देखा है जब वो मछली शिकार खेलने आता है, वो कांटा डालता है और कांटे में थोड़ा सा वो अपना कोई ना कोई चारा डाल देगा और फिर वो मछली आती है, घूमती है, जो सरकंडा होता है वो खेलता है, इधर से उधर हिलता है, नाचता है, और जो मछली मारने वाला बड़े धीरज से बड़े पेशेंटली ध्यान देता रहता है और एकदम से मछली उसको पकड़ के भागने की कोशिश करती है। मछली पकड़ने वाला तब जान लेकर एकदम से खींचता है, फिर मछली भाग नहीं सकती, वो कांटे फंस जाती है। कई बार शैतान भी मेरे और आपके साथ ऐसे करता है। थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा कुछ सामग्री दे दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? उसके अंदर क्या है? कांटा है। खाने के लिए तो मसाला दिखाई दे रहा है लेकिन असली क्या है? कांटा है। चारा तो चगोगे लेकिन चारे के साथ कहाँ जाओगे? तुम कांटे में फंसोगे, और मछली मारने वाला खींचेगा तुम्हारे कांटा फंस जाएगा। मुझे और आपको शैतान की चालों से सावधान रहना है। केवल प्रभु यीशु मसीह में ही आनंद की भरपूरी पाई जाती है। परमेश्वर काश मेरी और आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें।